मैडम, सर ने आपके लिए कार भिजवाई है। उसका जवाब सुनकर आरवी को कुछ अटपटा सा लगा कि शान आज उसके लिए कार क्यों भिजवा रहा है। फिर कुछ सोचकर उसने हामी भर दी और ड्राइवर के साथ आगे बढ़ गई। शान का जिक्र होते ही उसे उसका अब तक का उसका व्यवहार याद आने लगा था और इसी सोच में गुम उसने कार पर ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला तो वो कार में बैठ गई और कार आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ रश्मि और रेहान दोनों ही आज शूट पर पहुंचे हुए थे। सुबह से रश्मि ने खुद को किसी न किसी काम में बिजी किया हुआ था। वो रेहान से दूर ही रह रही थी, न तो उसके तरफ देख ही रही थी और न ही उससे बात ही कर रही थी। इन शॉर्ट, रश्मि मैडम सुबह से ही रेहान को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। कल तो दोनों की वैसे ही कोई बात नहीं हुई थी और आज जब से रश्मि आई थी वो न खुद रेहान से बात कर रही थी और न ही उसे ही बात करने का मौका दे रही थी। उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही थी। बेचारा रेहान तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो सुबह से ही मौके की तलाश में था जो उसे लंच होने पर मिला। रश्मि आज फिर बैकसाइड लगी चेयर पर बैठी थी जहां बहुत कम ही लोग आते थे और आज तो वहां उसके अलावा और कोई भी नहीं था। आज तो वो रेहान को भी बुलाकर नहीं लाई थी तो वहां बिल्कुल अकेली थी। रश्मि ने अपना लंच खोलकर टेबल पर रखा पर खाने की जगह किसी और ही सोच में गुम हो गई। कहाँ गुम हो मैडम, खाना क्या मक्खियों को खिलाने के लिए लगाया है? अपनी सोच में गुम रश्मि के कानों में अचानक ही जानी पहचानी सी आवाज़ पड़ी और वो चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आईं। निगाहें सीधे सामने खड़े रेहान पर चली गईं और उसके भाव एकदम से सख्त हो गए, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही रेहान ने चेयर उसके पास खींच ली और बैठते हुए बोला, आज तो तुमने मुझे बुलाया भी नहीं, लगता है अकेले सारा खाना खाने के प्लान में थी तुम। रश्मि जो कुछ गुस्से में नजर आ रही थी उसने रेहान की बात सुनी तो तुनकते हुए बोली, हाँ आज अकेले खाने वाली थी क्योंकि लंच भी सिर्फ अपना ही लाई हूँ, तभी नहीं बुलाया था तुम्हें, पर तुम फिर भी बेशर्मों की तरह बिन बुलाए ही चले आए। अब समझ आ गया ना कि क्यों नहीं बुलाया था तुम्हें, तो अब जाओ यहाँ से। रेहान बेचारा शॉक्ड सा उसे देखता ही रह गया। रश्मि अपनी बात पूरी करके उसे गुस्से में घूरने लगी क्योंकि वो अब भी वहीं जमकर बैठा हुआ था। रेहान ने आँखें बड़ी बड़ी करके रश्मि को देखा और हैरानी से बोला, आज तुम्हें हुआ क्या है, ये कैसे बिहेव कर रही हो तुम मुझसे? सुबह से देख रहा हूँ कि मुझे इग्नोर किए जा रही हो। रेहान की बात सुनकर रश्मि ने भड़कते हुए कहा, जब देख रहे हो कि तुम्हें इग्नोर कर रही हो तो यहाँ आकर मेरे सर पर क्यों बैठ गए हो? इतना दिमाग नहीं तुम्हें कि अगर कोई इग्नोर कर रहा है मतलब उसका मन नहीं आपसे बात करने का? और मैं तो अभी इतने गुस्से में हूँ कि तुम्हें देखना भी नहीं चाहती, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम एक पीस में रहो तो अभी यहाँ से चले जाओ। रश्मि गुस्से में भड़की हुई थी पर रेहान काफ़ी शांत नजर आ रहा था। हाँ, उसकी बातों को सुनकर हैरान जरूर था। रश्मि जैसे ही चुप हुई रेहान ने शांत लहजे में कहा, ठीक है, तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर पहले तो मुझे वजह बताओ कि आखिर हुआ क्या है। तुम मुझसे इतनी नाराज़ हो कि मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, तो इसकी कोई तो वजह होगी ही। तुम बस मेरी गलती बता दो, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। चलो बताओ मुझे कि क्या गलती है मेरी, ऐसा क्या किया है मैंने कि तुम इस कदर मुझसे नाराज़ हो? रश्मि का गुस्सा अब उसके बस से बाहर जा चुका था। आखिर में उसका सब्र जवाब दे गया और उसने खींचते हुए कहा, गलती तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे उस पागल दोस्त की है। जब मैं पहली बार उससे मिली थी तो मुझे बस वो एक नंबर के बदतमीज और अकड़ू लगे थे, पर अब मुझे पता चल गया है कि उनका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। उनका मानसिक संतुलन हिल गया है, उन्हें खुद को पता नहीं होता कि वो क्या करते हैं। वो ना साइको बन गए हैं और अभी मुझे उन पर इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर अभी वो मेरे सामने आ जाते तो मैं उनका गला दबाकर उनका सर दीवार पर दे मारती, उनके सारे बाल नोचकर उन्हें गंजा कर देती। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आरू के साथ इतना बुरा सलूक करने की? मुझे पहले से ही लगता था कि वो मेरी आरू के लायक नहीं है और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो मेरी आरू डिजर्व नहीं करते, पर मैं इतनी बेबस हूं कि उसे उन 10 सिर वाले दानव से बचा भी नहीं सकती क्योंकि मेरी आरू ही उनसे दूर नहीं जाना चाहती। इस बार तो मैंने आरू के लिए उन्हें यूं ही छोड़ दिया, पर अगर उन्होंने दोबारा आरू के साथ बदतमीजी की, उसे तकलीफ पहुंचाई, तो मैं आरू की भी नहीं सुनूंगी और उसे उनकी कैद से आजाद करवा दूंगी। उन्हें वैसे भी आरू की रत्ती भर भी कदर नहीं है, तो मैं उसे उनसे दूर ही कर दूंगी। उन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पर साथ साथ तुम्हारा जीना भी हराम कर दूंगी। रश्मि ने उसको भी धमका दिया। उसकी बातें सुनकर रेहान आंखें फाड़े उसे देखता ही रह गया। फिर उसने हैरानगी से पूछा, तुम मुझे बीच में क्यों ला रही हो? अगर नाराज उससे हो तो जाकर उसको सुनाओ ना, मुझ पर क्यों बरस रही हो? क्योंकि वो पागल आदमी तुम्हारा दोस्त है और उसने मेरी फ्रेंड का जीना हराम किया हुआ है, रश्मि ने गुस्से भरे लहजे में जवाब दिया। फिर उंगली दिखाकर उसे चेताते हुए बोली, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ कि अपने साइको दोस्त का अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवा लो। इस बार तो आरू की वजह से मैंने उन्हें छोड़ दिया, पर अगर दोबारा उन्होंने ऐसा कुछ किया तो मैं उनके साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगी। रश्मि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। बेचारा रेहान बेवजह ही बीच में फंस गया था। उसने बेचारगी से उसे देखा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए शांत लहजे में बोला, रिलैक्स, मैं पहले ही शान से इस बारे में बात कर चुका हूँ, इनफैक्ट उससे लड़ चुका हूँ और उसने कहा है कि अब वो भाभी को और हर्ट नहीं करेगा। यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे उस पागल दोस्त के लिए भी। रश्मि ने एक बार फिर उसको धमकाया। उसकी धमकी सुनकर रेहान ने अपना सर पकड़ते हुए बेबसी से कहा, क्या है यार रश्मि, मैं पहले ही इतना परेशान हूँ और तुम मेरी टेंशन कम करने की जगह उसे बढ़ाए जा रही हो। कम से कम कुछ पल तो सुकून से बिताने दो मुझे, पर नहीं, तुम तो एटम बम की तरह मुझ पर ही फटे जा रही हो। अब क्या मुझे मारकर ही मानोगे तुम? रेहान अब चिढ़ गया था या शायद परेशान हो गया था। रश्मि अब खामोश हो गई, शायद अब जाकर उसको समझ आया था कि वो अकेली परेशान नहीं है, ये सिचुएशन रेहान के लिए भी उतनी ही चैलेंजिंग है। रेहान अब परेशान सा कुर्सी पर बैठ गया। रश्मि कुछ पल उसको परेशान निगाहों से देखती रही, फिर उसने पीछे से उसकी गर्दन में अपनी बाहों को लपेट दिया और उसके सर से अपना सर सटाते हुए बोली, सॉरी मैं आरू को लेकर बहुत परेशान हूँ। पहले ही उसकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें थीं, बड़ी मुश्किल से कुछ खुशियाँ मिली थी उसे, पर उसकी पहचान ने उससे उन खुशियों को भी छीन लिया। अब उसे मिस्टर मल्होत्रा की बेवजह की नफरत सहनी पड़ेगी। फिर जैसा व्यवहार उन्होंने आरू के साथ, मुझे आरू की बहुत फिक्र हो रही थी और तुम्हारे दोस्त पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था और वही गुस्सा तुम पर उतर गया। आई एम सॉरी। रेहान ने उसकी बाहों को अपनी गर्दन पर से हटा दिया, फिर उसकी बाँह पकड़कर उसे अपने साथ लगी चेयर पर बिठा लिया। रश्मि असमंजस भरी निगाहों से उसे देखने लगी।